दत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम्। हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्योपनिषत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषत् का हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह उपनिषद का पहला शांति मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं। ये मंत्र में हमारे आर्षदृष्टा ऋषि ने जो तत्व का दर्शन किया है वो आज तो नहीं, हजारों साल के बाद भी सबको आनंद और विस्मय से विनम्रता से भर देगा। ऐसा तत्व यह मंत्र में निरूपित किया गया है। परम तत्व परमात्मा के प्रति हमारे ऋषि की ये जो विभावना है यही हमें मुग्ध करने वाली है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एक ऐसे पूर्ण तत्व की भावना यहां व्यक्त की गई है। ये जो विश्व है और मैं थोड़ा समझे, अरे बहुत समझे तो भी बहुत कुछ ऐसा है जो समझने में शेष ही रह जाता है। और इसीलिए इस मंत्र में वो तत्व का परिचय दिया, पूर्णमदः पूर्णमिदं। वो एक सार तत्व को हमारे ऋषि ने पूर्ण शब्द से निरूपित किया है। पूर्ण फुल, जिसमें कुछ कमी नहीं है। जैसे हमारे उपनिषद में 32 ब्रह्म विद्या बताई गई है, नाचिकेत विद्या, आकाश विद्या, दहर विद्या, ऐसा ब्रह्म साक्षात्कार करने के 32 डायमेंशंस है। 32 ब्रह्म विद्या दिखाई गई है, उनमें एक विद्या का नाम है भूम विद्या। भूम नाम किम? भूम अर्थात विशाल। तो ये भूम विद्या की जो उपासना है वो क्या है? तो कि उनकी प्रधान श्रुति है, नाल्पे सुखम भूमा वै सुखम, न अल्पे सुखम भूमा वै सुखम। अल्पता में सुख नहीं है, भूमा वै सुखम, भूम नाम विशालता में सुख है। ये जो अल्पता है, हमारी दृष्टि की जो अल्पता है, हमारी विचारधारा की जो अल्पता है, कहीं ना कहीं ये अल्पता ही हमें क्लेश की ओर ले जाती है। ज्यादातर व्यवहार में देखो, ज्यादातर डिस्प्यूट होते हैं उनके मूल में यदि आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी को मैटर क्या है उनका पूरा पता ही नहीं होता है। और यही अल्प ज्ञान, यही अल्पता की कल्पनाएं, उनमें से ही कहीं प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। और इसीलिए हमारे उपनिषद में यह भूम विद्या बताई कि नाल्पे सुखम भूमा वै सुखम, सुख तो विशालता में है। कारण तत्व के साथ पूर्णता से यदि तुम देखोगे तो वास्तविक तत्व और वास्तविक स्वरूप ज्ञान में आएगा। और वही कुछ विभावना को यही मंत्र से हमारे ऋषि प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं कि परम शांति की अनुभूति करनी है तो पहले पूर्णता में स्थिर थाओ। यही पूर्णता है, उनमें ही एक प्रकार की लय है। लय है वही पूर्ण जीवन है। अब देखो, अपूर्ण चीज किसी को नहीं भाती। रोटी खाओ, पूरी खाओ, कुछ भी खाओ, किंतु यदि पूर्ण नहीं है, कच्चा है, तो आपके पास 5 आइटम होगी, 5 में से एक भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। कोई एक वस्तु भी पूर्ण पकी हुई है तो वो हमारी भूख भी मिटाएगी और हमें आनंद भी प्रदान दे करेंगे। इसलिए पूर्ण ही सबको पसंद है। जैसे कोई कलाकार है, चित्रकार है, संगीतकार है, तो वो स्वभाव से ही परफेक्शनिस्ट होता है। कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है तो उन्हें आधा अधूरा चित्र पसंद नहीं आता। देखो, स्वभावतः यदि हम हमारी प्रकृति देखें तो भी ये तो दिखाई पड़ेगा ही। हाँ, हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा बन गया है और अधूरे अधूरे जीवन में, अधूरे विचारों में और अधूरी क्रिया में ही जीना सीख गए हैं तो बात अलग है। किंतु यदि देखे तो पूर्णता ही सबको पसंद है। आप भोजन करने बैठते हैं और आपकी थाली में यदि लड्डू दिया जाए और वो लड्डू आधा है तो आपके मन में कल्पना क्या आएगी कि आधा क्यों है, किसी ने खाया तो नहीं, ये किसी का झूठा तो नहीं। हमारे जैसे स्वामी नारायण में लड्डू तो बहुत फेमस है तो हमें ऐसी चीजों का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो कि जब लड्डू बनाते हैं तो चौकिया और चौकिया सब लड्डू की भरी होती है, तो कहीं बार गरम गरम लड्डू बना देते हैं तो लड्डू का नीचे का भाग है वो चौकी के ऊपर पहले वो घी या तेल से ऐसे लेयर करते हैं हाथ से, बाद में लड्डू रखेंगे तो लड्डू वैसा का वैसा अलग पड़ जाएगा। और कोई ऐसा करना भूल गया और लड्डू खींचेंगे तो नीचे से नीचे का भाग है वो लड्डू का चिपक जाएगा, तो हाथ में लेके वो लड्डू अच्छा सा दिखेगा नहीं। किसी को देंगे तो भी सोच में पड़ जाएगी कि ये कैसा लड्डू है। अब देखो, छोटे बालक को भी आधा अधूरा लड्डू पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारे सर्जन में पूर्णता नहीं है, कुछ बात की कमी है, त्रुटि है, अपूर्णता है, तो उन्हें देख के ही मानव स्वभाव से हमें बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपूर्णता का सर्जन करते हैं या अपूर्णता को ग्रहण करते हैं तो हमको ही मन में ऐसा लगता है कि ये कॉस्मोस में कुछ तो विक्षिप्तता है। अपूर्णता किसी को नहीं भाती। और इसीलिए ये जो अपूर्णता है, ये जो पूर्ण विश्व का प्रवाह है, उनमें कोई विक्षेप करने वाला तत्व है तो ये है अपूर्णता। हिंसा, चोरी, अप्रामाणिकता, किसी के प्रति बुरा सोचना, ये जो वृत्तियां है और ये वृत्तियां में से उठने वाली जो क्रिया है, ये जो कॉस्मोस की जो पूर्णता है, कॉस्मोस की जो लय है, उनको विक्षिप्त करती है। और इसीलिए ऋषि क्या है, किसको हम ऋषि बोलते हैं? अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपनी क्रिया से, ये विश्व की जो लय है उनमें कम से कम विक्षेप पैदा करे वही ऋषि है। क्या? अपने जीवन से, विचारों से, वाणी से कम जितना कम से कम हो सके उतना विक्षेप पैदा करे वही ऋषि है। और पुण्य और पाप का जो संबंध हम स्वर्ग और नरक के साथ जोड़ते हैं, उनके मूल में भी कुछ ऐसी ही भावना है कि मनुष्य अनिष्ट सोच रखता है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो वही दुर्व्यवहार ये जो विश्व की जो लय है उनमें विक्षेप पैदा कर देता है, और इसीलिए उनको नरक की प्राप्ति होती है। पाप कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। उनका अर्थ क्या कि ये जो सृष्टि की पूर्णता है, ये सृष्टि की जो संवादितता है, ये सृष्टि की जो लय है, उनमें आप मैच नहीं हो पाते हैं, या तो आप मैच होना ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए आप ये सृष्टि के लायक ही नहीं है। सृष्टि ही नरक में भेज देती है, अर्थात नीचे 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 भेजती रहती है। स्वर्ग और नरक की परिभाषा में पहला ही भेद बोले तो ऊर्ध्वगमन है वो स्वर्ग है और अधोगमन है वो नरक है। मनुष्य है किंतु अपने कर्तव्यों में नहीं रहता तो स्वाभाविक है कि वो नीचे ही जाएगा, और अपने कर्तव्यों में पूर्ण होता है तो ऊपर 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 और ऊपर ही उठता जाएगा। तो पहले तो मनुष्य है और मनुष्य की भांति ही रहता है, तो उनके लिए अगला जन्म मनुष्य का ही है, लेवल में भी है। मनुष्य है किंतु सोच पशुता की है, तो वो मनुष्य से नीचे की योनियों में जाएगा, पशुता में। उनका अगला जन्म पशु का है, ये कन्फर्म ही है। कौन बोलता है? तो कि उसका जीवन क्लास में पढ़ता है, भगवान ने बुद्धि शक्ति दी है, किंतु अपनी शक्ति और क्षमता का लेश मात्र उपयोग, अपनी बुद्धि का उपयोग कुछ करता नहीं, बस बैठा ही रहता है, खिड़की से बाहर ही देखता है। बुद्धि है किंतु बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, और वही जड़ता से युक्त बन जाता है। तो यही बुद्धि की जड़ता उन्हें अगले जन्म में वो जड़ पशुवती बना देगी। जैसे कोई बहुत क्रोध करता है तो क्रोध युक्त सर्प है, उनको देखो, सर्प अखंड क्रोध में रहता है, क्रोध की योनि बोले जाता है। जरा भी उनको चिड़ाओ, सीधी फैन लेके खड़ा रह जाता है। तो उनकी वृत्तियां ही उनको अधो योनि में ले जाती है, और इसीलिए स्वर्ग और नरक क्या है, ये सृष्टि की जो लय है, ये लय प्रक्रिया में हम अखंडित रहे तो ये सृष्टि हमें कभी नरक की ओर नहीं ले जा सकती, और इसलिए लय में रहना यही परम कर्तव्य है। और यही कुछ तत्व, ऐसे तत्व की ओर हमारा ये उपनिषद, ईशावासीय उपनिषद हमें अंगुली निर्देश करता है। कैसी ऊंची हमारे ऋषियों की ये दिव्य विभावनाएं है, और इसीलिए तो पाश्चात्य चिंतक शोपनहावर, उन्होंने उपनिषद के बारे में अपना एक कोट दिया कि ये उपनिषद क्या है। मानव जात ने लगाई हुई सबसे ऊंची ऊंची छलांग वही उपनिषद है। फिर से उपनिषद नाम, मानव जात ने लगाई हुई सबसे ऊंची छलांग, ऐसा चिंतन ये मनुष्य जात ने कभी पहले नहीं किया, वो चिंतन हमारे आर्ष दृष्टा ऋषियों ने दिया। कि पहले तो मन को पूर्णतया स्वस्थ करना है, मन को पूर्णतया शांत करना है, तो पहले क्या है, पूर्ण तत्व में अपने मन को स्थिर कर दो। वो तत्व कैसा है? पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। ये जो पूर्णता है, पूर्ण पूर्णता का ज्ञान है, यही आनंद का रहस्य है। पूर्णता में ही आनंद है, पूर्णता में ही आकर्षण है, पूर्णता में ही लगाव है। कोई बोलता है ये कैसा जगत है, तो उनका मतलब प्रॉब्लम सृष्टि में नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? सृष्टि को देखने के नजरिए में है। कोई बोलता है ये जगत तो दुख रूप है, दुखों की खान है, तो कोई बोलता है ये तो जगत आनंद है, उत्सव है। भक्त नरसिंह बोलते हैं, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे, नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार रे। देखो नरसिंह ने क्या मांग लिया, प्रभु मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्मो जन्म अवतार चाहिए, मुझे यही रहना है। क्यों? क्योंकि यही जगत में, यही सृष्टि में आपका मुझे दर्शन होता है, आपकी सेवा का मुझे सु अवसर प्राप्त होता है, और उन्हीं से ही मैं प्रभु इतना सुखी हूं, तृप्त हूं, आनंदित हूं कि बस मुझे इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहिए। देखो तो ये पूर्णता का ज्ञान है, वही संतोष है, वही तृप्ति है। और तृप्ति की जब बात आई है तो दो शब्दों में चर्चा कर ले कि तृप्ति है, जो तृप्ति हमें पूर्णता से प्राप्त होती है, यही तृप्ति हमें गलत निमित्तों से दूर रखती है। ध्यान से सुनना, हमारा गलत निमित्तों में जो आकर्षण होता है, आकर्षण जनित पीड़ा और दुख की हम वेदना को महसूस करते हैं और दुखी तो होते हैं, वो सब के मूल में क्या है? तृप्ति का अभाव। उनको शास्त्रीय भाषा में वासना बोलते हैं। वासना नाम कि जैसे भूख लगती है तो वो शरीर की भूख है, तो वैसे वासना है वो मन की भूख है। और भूख हमेशा तृप्ति की ओर दौड़ती है, तो जब तक हमें तृप्ति नहीं प्राप्त होती है तो वही अतृप्ति हमें बाहर दौड़ाती ही रहेंगी। वो भूख को कैसे मिटाना है, उनके बदले कोई दूसरा ही आ जाए। जैसे प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, और वो प्यास पानी से बुझने वाली है, किंतु एक दारू की बोतल देख के लग गया कि यही तो पानी है, ऐसा मान के पी गए, तो क्या होगा? प्यास बुझेगी या नहीं वो तो अलग बात है, किंतु नशा चढ़ जाएगा, जीवन की यात्रा बदल जाएगी। तो अतृप्ति है, वही हमें गलत निमित्तों की ओर ले जाती है, और तृप्ति है, वही हमें संतुष्टि की ओर, आनंद की भूमिका की ओर ले जाती है। यह देश में गुनाखोरी, चोरी और कहीं प्रकार के सामाजिक स्तर पे ये जो लय में विक्षेप पैदा होता है, और ये सब के मूल में यदि जाए तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, गरीबी। हम दूसरे देशों में देखते हैं तो ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि न्यूज़पेपर का थप्पा रास्ते पर पड़ा है, एक बॉक्स पे उनका रेट लिखा हुआ है और बाजू में एक बॉक्स रखा है पैसा डालने के लिए, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है वहां पर, फिर भी वो रेट पढ़ के लोग न्यूज़पेपर लेके उतने पैसे डॉलर या जो कुछ करेंसी है वो बॉक्स में डाल देते हैं और चले जाते हैं। देखो ये लयबद्धता है। ऐसी लयबद्धता का कारण क्या है? अतृप्ति नहीं है, गरीबी नहीं है, भौतिक स्तर पे भी तृप्ति आ जाए तो भी हमारा भौतिक विश्व है वो आनंद से भर जाता है। तो देखो यही तृप्ति हमारे आत्मा के स्तर पर आ जाए तो ये विश्व में कैसा चमत्कार हो जाएगा, किसे आनंद में हम पहुंच जाएंगे। और इसीलिए ये जो पूर्ण तत्व की विभावना है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये पूर्ण है, वो पूर्ण है, सब पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है, इसका मतलब क्या? कि सब पूर्ण है, तुम चिंता मत करो। और ये पूर्ण तत्व में हमारी दृष्टि पहुंच जाएगी तो हमारे अंतर में तृप्ति जागृत हो जाएगी, और यही तृप्ति, यही आनंद, आनंद की भूमिका है, वही सभी प्रकार के विकास का मूल रहस्य है। तृप्ति जनित जो आनंद है वही आनंद से ही हमारी सभी प्रकार से उन्नति होती है। और इसीलिए सबसे बड़ा धर्म कोई पूछे हमें तो पहला तो हम यही बताते हैं कि पहले तुम आनंद में रहो, जैसे गुजराती भाषा में बोलते हैं मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे वो रे, अगमय गोचार अलख धनिनी, खोज मारे वो रे, मौज मारे वो, मौज मारे वो, हे मौज मारे वो रे। पहले तो तुम मौज में रहो, आनंद में रहो, क्योंकि आनंद में पॉजिटिविटी है और यही पॉजिटिविटी सभी प्रकार की पॉजिटिविटी को हमारी ओर आकृष्ट करेगा, अच्छे ही विचार आएंगे, अच्छे ही कर्म हमसे होंगे। और इसीलिए सबसे पहला धर्म है कि आनंद में रहो। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो कि विचार कैसे है, उनमें उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे बाहर निकला जाए, और ऐसे मन बुद्धि का यदि विभाग नहीं कर पाते तो इतना तो हम एक ही सेकंड में सोच सकते हैं कि अभी मुझे आनंद आता है या नहीं। बस आप ये उपनिषद का चिंतन सुन रहे हैं तो पहला विचार इतना ही करो कि मैं ये सुनने के लिए बैठा हूं तो मुझे ये सुनने में आनंद आता है कि नहीं। यदि आनंद आता है तो बराबर है, क्यों? क्योंकि यही आनंद हमें आगे और आगे ले जाएगा। उपनिषद हो या कितनी भी ऊंची बात हो किंतु मजा ही नहीं आता तो छोड़ दो, क्यों? क्योंकि बिना आनंद के यदि कुछ सुना या ग्रहण किया तो भी आपका इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला तो यही है कि आनंद, आनंद की जो भूमिका है वही सभी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति की जननी है। और इसलिए आनंद में तो सदा रहो। जीव मात्र को यह पूर्णता की खोज है, अपूर्णता किसी को नहीं भाती, अकेलापन किसी को भी पसंद नहीं है, क्यों? पूर्णता की खोज क्यों है? जवाब है पूर्ण होने के लिए, क्यों? पूर्ण होने के लिए। सजातीय तत्व की ओर हमेशा आकर्षण होता है। यदि ब्रह्मांडीय संरचनाओं के बारे में सोचे तो जो बड़ा है वो अपने से छोटे को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। सभी ग्रहों के विज्ञान में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो जैसे हम कहां आकृष्ट, क्यों आकृष्ट होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं, और ये अपूर्ण अंतर की जो अपूर्णता है यही हमें पूर्णता की ओर दौड़ाती है। और इसीलिए पूर्णता की हमें खोज है। अब वही खोज को, खोज से हम दौड़ तो रहे हैं, ये आंख है वो दौड़ रही है, कान वो कहीं ना कहीं सुनने के लिए तलप रहे हैं, ये जीवा कहीं प्रकार के रस का आस्वाद लेके, ये सब इंद्रियां चारों ओर से ये सब एकत्र करती है। क्यों? ये ला ला के सब जीव को देती है। आत्मा मनसा संयुजते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन, ये जो पूरी प्रोसेस है कि आत्मा हमारे अंतःकरण पर अपना प्रकाश डालता है, वही अंतःकरण की शक्ति है वो इंद्रियों में जाती है, और वही इंद्रियां इंद्रियों के माध्यम से बाहर विषयों के प्रति जाती है, और अलग अलग विषय वस्तु पदार्थ को लेकर पुनः ये इंद्रियां आत्मा को दे रही है। किंतु यदि देखो यही आंख से जगत के कितने रूप देख लिए, कितनी प्रकार के रूप देख लिए, क्या आंखें तृप्त हो गई? कितना खा लिया? यदि उनकी क्वांटिटी एकत्रित करे तो पूरा ऐसा बड़ा हॉल भर जाता है कि 20-25 साल में इतना खा गए, इतने टन खांड खा गए, इतना नमक खा गए, कितना खा गए, किंतु भूख वैसी की वैसी है। देखो शरीर के लिए वो भूख बराबर है, भोजन बराबर है, किंतु अभी हम बात करते हैं हमारे आत्मा के भूख की, तो क्या वो भूख मिट गई? बाह्य रूप से कभी हमारे आत्मा की भूख नहीं मिट पाएगी। कितनी भी नदियों का पानी लेकर समुद्र है वो कभी पूर्ण और तृप्त होने का नाम नहीं लेता। कितना भी पानी आ जाए, कितनी भी लकड़ियां जला दो, फिर भी अग्नि कभी तृप्त नहीं होगा। वैसे ही इंद्रियों के माध्यम से बाह्य कितने ही विषय दे दो, ये जो मन है वो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। इनको तृप्ति कब मिलेगी? ये जो आत्मा मन इंद्रिया है उनके जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व का जो रियल में आधार है, और उनके साथ जब इनका जुड़ाव होगा और वही ब्रह्म रस की प्राप्ति इनको होगी, तब पूर्ण तृप्ति हो पाएगी। और ये कैसे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ऐसे हजारों दृष्टांत हमने देखे हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं तो यही वातावरण में आजू बाजू में ऐसे कहीं भक्त संत और मुमुक्षु है जिनको हम देखते कि भोजन किसको नहीं भाता, खाते भी है, खाना पड़ता भी है, किंतु उनके प्रति वो राग है, उनके प्रति वो जो दौड़ है, या उनमें कुछ विक्षेप आ गया तो वो विक्षेप से जनित जो क्रोध है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बस भोजन करते हैं, क्यों? क्योंकि ये शरीर के लिए जरूरी है, बस इतना ही है। और उनकी तृप्ति और उनका आनंद तो कुछ अलग ही है। और इसीलिए ये जो तृप्ति का मूल स्रोत है, वहां जुड़ने से ही पूर्ण तृप्ति प्राप्त होने वाली है। और ये उपनिषद हमें उस ओर ले जाता है कि वो क्या है, पूर्ण तत्व क्या है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने पहले कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। पहला शब्द है पूर्ण मदह। ये शब्द में दो शब्द है, इनको यदि संस्कृत की दृष्टि से उनकी व्युत्पत्ति या संधि विच्छेद करे तो पहला शब्द है पूर्णम और दूसरा है अदह। अदह नाम अदस, विप्रकृष्टे अदस, दूरवर्ती जो है उनके लिए अदस नाम धैट। ये पूर्णम अदह अर्थात वो तत्व है, वो पूर्ण है जो दूर है, जो अदृश्यमान है, जो अगम्य है, उनके लिए अदह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो तत्व है वो पूर्ण है। वो क्या है? सबसे परे, माया से परे वो ब्रह्म है। ये दूर है ऐसा क्यों कहा? दूर अर्थात कि प्रकृति मंडल से भी दूर। जैसे विस्तृत जिनकी व्याख्याएं हमारे उपनिषद, श्रुतियां, स्मृतियां और सभी शास्त्र यही तत्व के लिए आज तक बातें करते हैं, दूर प्रकृति मंडल से भी दूर, जहां न चंद्र न तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि ही, जहां सूर्य चंद्र ये तारा नक्षत्र मंडल उनकी सत्ता भी जहां समाप्त हो जाती है उनसे भी परे कोई तत्व है। एक ब्रह्मांड की हम बात करें तो यह ब्रह्मांडीय रचना भी इतनी बड़ी और विशाल है कि इनका अंत पाना भी बहुत मुश्किल है। तो एक तो क्या न देखाने दिखने वाले ऐसे दूसरे अनंत ब्रह्मांड है, फिर भी उनकी कोई ना कोई तो परिधि, कोई ना कोई तो सीमा है, कोई ना कोई तो सीमा है। अदह वो सब सीमाओं से पार कोई तत्व है, वही पूर्ण तत्व है, उनकी बात करता है उपनिषद। पूर्ण मदह सीमातीत विराजमान कोई तत्व है, वही पूर्ण है। और ऐसे प्रकृति मंडल से पर तो एक तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो परमात्मा है जो असीम है। और उसके लिए भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोका, ये ब्रह्मा के लोक पर्यंत ये सब तो सीमित है, पुनरावर्तन वाले लोक है, उनके पर तो एक भगवत धाम है, भगवत तत्व है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कोई ऐसा स्थान कि जहां जाके पुनः कभी वापस लौटना नहीं पड़ता है, ऐसा कोई तत्व है। तो ये है पूर्ण मदम, पूर्ण मदह वो तत्व है वो पूर्ण है। ये लोक में हम पूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां कोई संदर्भ होता है। कैसा संदर्भ? जैसे ये व्यक्ति पूर्ण विद्वान है, ये पूर्ण इलेक्ट्रिशियन है, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। किंतु यदि यही संदर्भ में देखा जाए तो उनकी पूर्णता है, ये पूर्ण विद्वान है ऐसा हम प्रयोग करेंगे तो शास्त्र दृष्टि से शायद वो पूर्ण होगा, किंतु यदि उन्हें दूसरा काम सौंपा जाए तो वहां तो वो पूर्ण अज्ञ है। और इसीलिए पूर्ण शब्द ये जगत में कहीं पर भी किसी के लिए भी हम यदि प्रयोग करें तो भी पूर्ण शब्द कोई व्यक्ति के लिए सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण है तो दूसरी चीज में तो वो कुछ कुछ भी नहीं जानता है। और इसीलिए पूर्णता ऐसी होनी चाहिए जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, कोई संदर्भ की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा सर्वथा वो पूर्ण ही रहना चाहिए। और ऐसा तत्व वो है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। वो कर भी सकता है, करके भी अकर्ता रह सकता है। हमारी बुद्धि और सोच कुछ काम नहीं करती, वैसा अन्यथा कर्तुत्व भी जिसमें है, असंभव को भी संभव बना दे, वो पूर्ण तत्व है। तो यही ऐसा कोई पूर्ण तत्व है, उनमें हमारी दृष्टि पहुंच जाए तो हमारे मन को परम विश्रांति मिल जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम नचिंत हो जाते हैं। वही है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ करता है, तो मुझे चिंता क्या करनी है। आज से हम एक नई कथा का प्रारंभ कर रहे हैं दोपहर के बाद 4 बजे से, क्योंकि नीलकंठ कथा 1 साल से करते ही आ रहे थे गुजराती भाषा में। तो आज एक गुजराती भाषा में एक कथा की सीरीज, स्वामीनारायण भक्त परायण, एक भक्त जीवन से उठने वाले उच्च आदर्शों की कथा, कि हृदय में भक्ति आ जाए तो वही भक्ति क्या करती है। तो उनकी एक कथा तो मैंने किसी को भेजा था करेक्शन के लिए, तो बोले कि आप कितना करेंगे स्वामी, परिषद का चिंतन, ये कितनी सेवाएं, ये सब। तो हमने एक ही शब्द बोला कि हम कहां कुछ करते हैं, ये सब चिंता और भार हमें कब रहेगा, जब सब हम अपने सिर पर लेके घूमेंगे, तब जब ऐसा सोच लेंगे कि हम तो निमित्त मात्र है। जैसे नदी के प्रवाह में बहने वाले को कुछ चिंता नहीं है, बस उन्हें सो जाना है, प्रवाह उनको ले जाएगा जहां ले जाना है, उनका जो करना है। तो एक बार ये प्रवाह में प्रवाहित होने लगे तो सभी चिंता हमारी कम हो जाएगी, मन परम विश्रांति को पा जाएगा। चलना है वो भी परम तत्व परमात्मा की गोद में चलना है, करना है वो भी उनके लिए करना है। सफल होगे तो भी उनकी प्रसन्नता होगी, और निष्फल होके गिर जाएंगे तो भी उनकी गोद में ही गिरने वाले हैं, तो मुझे चिंता क्या करनी है। मुझे यह जो जीवन मिला है, ये जीवन के लिए मुझे ये जो जीवनी शक्ति मिली है, मुझे मन बुद्धि की ये जो शक्ति और क्षमताएं मिली है, बस मुझे तो उनसे उनका बेस्ट आउटपुट देना है और अपने आत्मा को और परमात्मा को पूर्णतया प्रसन्न करना है। और यही रीत से पॉजिटिव रहकर, आनंद की भूमिका में स्थिर होकर, शुद्ध भाव से मैं चलता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा, तो जो कुछ भी बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए है वो सब मुझे मिलने ही वाले हैं। ये सृष्टि में हमारे लिए जो सबसे अच्छा होगा वो हमें मिलता ही जाएगा। हाँ, हमारे लिए ये समझना, वरना हमारा प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो मिला, मुझे वो मिलना चाहिए। उनके लिए नहीं, हमारे लिए यदि संतोष की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो मिलेगा। एक ही प्रश्न पूछूं यदि कि हमको जीने के लिए कितनी हवा चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए दिन में, और हमें कितना मिला है, जरा देखो, अनंत। सोने के लिए, बैठने के लिए हमें जगह कितनी चाहिए, हमारे अस्तित्व के लिए, जरा आजू बाजू में दृष्टि कर लो, कितना मिला है। ये बदन को ढांकने के लिए कितने कपड़े आवश्यक है, हमें मिला है कितना, सब ओर से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा हमने हमको भगवान ने दिया है, किंतु यदि संतोष नहीं है तो ये पूरे विश्व की संपत्ति भी हमें कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगी। और इसलिए ये जो पूर्ण मदह ये कारण रूप तत्व है वो उनमें दृष्टि पहुंच गई तो यही पूर्णता का ज्ञान हमें आनंद प्रदान करेगा। हमारी टेगलाइन है ईशावासी उपनिषद, अस्तित्व का उत्सव ईशावासी उपनिषद। ये एग्जिस्टेंस है, ये पूरा एग्जिस्टेंस फेस्टिवल कब बन जाएगा? ये पूरा अस्तित्व ही उत्सव कैसे बनेगा? ये पूरा जीवन उत्सव कैसे बनेगा? जब ये अस्तित्व के आधार के और हमारी गति होगी, जितना जितना हमारे आधार का हमें परिचय होगा और उनके साथ हमारा जुड़ाव होगा, वैसे वैसे हमारा मन और चित्त आनंद से भरता ही जाएगा। और हमारे लिए पूरा अस्तित्व है, पूरा विश्व है, वो उत्सव बन जाएगा। और इसलिए पूर्ण मदह वो तत्व है, सबका कारण तत्व है, सबके पीछे छिपके रहने वाला जो तत्व है वो पूर्ण है। और उनका सीधा दृष्टांत देखो, कल हम 200 किलोमीटर दूर गए थे, हमारे एक हरिभक्त थे, उनका बड़ा फार्म था तो कहीं दिन से बुला रहे थे, तो सब संत गए थे। 5000 काजू के पेड़, 5000 आम के वृक्ष, इतना बड़ा उनका था। तो कहीं प्रकार के फल फूल लगे हुए थे, तो एक वृक्ष देखा, सिंदूर का वृक्ष जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, सिंदूर। तो ऐसा सिंदूर का वृक्ष, तो मैं तो वो वृक्ष और ये सिंदूर देख के ही आश्चर्य में पड़ गया। कितना केसरी, देखो, साथ में मैं थोड़ा ले आया, मैंने सोचा मुझे तो बहुत अच्छा लग गया। ये जो है ये सिंदूर का, ये सिंदूर है जिनके एक एक पत्ते के अंदर ये पूरे ये दाने, ये खुला हुआ है और इनमें सब दाने भरे हुए है केसरी कलर के। और यही सिंदूर, इसको यदि हम लेकर यदि हाथ में ले गए तो पता चलेगा कि ये कितना केसरी हो जाता है। देखो, अब ख्याल रखना पड़ता है। अब देखो, हमने तो वही देखा कि भूमि है, काली मिट्टी है, उनमें से पेड़ निकलता है और इतना पूरा वृक्ष ही सिंदूर का था, पूरा वृक्ष ही ऐसा था, एक भी पत्ता नहीं था। उनका जो पाक आ गया तो वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं था, पूरा वृक्ष ऐसा था। देखो, तो काली मिट्टी है, तो वही काली मिट्टी से ये केसरी रंग आया कहां से? जैसे लेबोरेटरी में जाके देखो तो उनमें कोई ये सेफ्रन कलर मिलेगा ही नहीं मिट्टी से। तो एक बीज बो दिया, देखो ये वृक्ष ने उन्हें सिंदूर बना दिया, मधुर मधुर फल बना दिए। वैसा तो कुछ स्वाद जमीन में भूमि में था ही नहीं। कितने कलर के फूल अलग अलग खिलते हैं, वो वर्ण, वो रंग, वो सब आया कहां से? यही है कि सबके पीछे सबके कारण में कोई पूर्ण तत्व है। देखो, ये सिंदूर के पेड़ की जगह मिर्ची का छोड़ बो देंगे तो वही भूमि, वो तिखास जितनी है वही लाके वो छोड़ को दे देंगे। गन्ना वहां रोप देंगे तो मधुर फल आ जाएगा और वो शेरड़ी है वो मीठा मधुरा रस एकत्रित करने लगेगी। जिस प्रकार का बीज बो, ये पूरी सृष्टि उनका ही पोषण करके वो तुम्हें दे देती है प्रकट करके। जो भी बो सब कुछ दे देती है भूमि। केवल ये सृष्टि और ये पृथ्वी तत्व की बात करें तो ये पृथ्वी में भी इतने आश्चर्य छिपे हुए हैं कि वहां हम नहीं पहुंच पाए। तो देखो, ये सब के पीछे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, ये सबके पीछे रहने वाला वो पूर्ण तत्व है, वो कैसा है? तो पूर्ण मदह वो कैसा है? पूर्ण है। और वो पूर्ण की ओर हमारी दृष्टि पहुंच जाएगी तो हमारा मन भी परम स्थिर शांति और आनंद से भर जाएगा। पूर्ण मदह, कल लेंगे पूर्ण मिदम, आज के लिए इतना रखेंगे। अस्तु। किसी को कोई प्रश्न है या पूछना है तो पूछ सकते हैं।
Prabhu ji, the meaning of this verse is like whatever you take from the Purna, again it remains Purna. Actually, I mean, if you see materially, for example, entire sea is available. If you take one bucket of water out from the sea, still the sea remains perfectly. Is it because we cannot measure the sea, we are saying that it is Purna? Because when you take the entire, if some measuring gadget is there, to measure the entire water of the sea in liters. If you take one bucket, say 25 liters out of the sea, the indicator will show that 25 liters is less. But if we don't have the measuring instrument, we will say it is same. So is it because we don't have a measuring instrument to see the Purna, we say it's Purna? Still, if you take the Purna outside from the Purna, it is Purna. Is it so?
हाँ, पूर्ण से पूर्ण लेंगे तो भी पूर्ण ही रहेगा। जैसे समुद्र की इतनी बड़ी जल राशि है कि एक बकेट उनसे ले लो तो भी उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दृष्टि से हम कह सकते हैं कि समुद्र पूर्ण ही है। इतनी बड़ी जल राशि है कि उनकी दृष्टि से एक बकेट कम हो गया तो भी उनमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक नहीं, हजारों बकेट जल ले लेंगे तो भी नहीं असर पड़ेगा समुद्र को। और दूसरा कि जल की दृष्टि से यदि हम देखें तो थोड़ा जल कम हुआ ऐसा हमें लगेगा, किंतु जल का भी आधार तेज है। तो तेज की दृष्टि से, जैसे वचनामृत ग्रंथ में भगवान स्वामी नारायण ने बोला कि पृथ्वी की दृष्टि से यहां देखेंगे तो सब पृथ्वी ही है। यह सृष्टि में पृथ्वी की दृष्टि से हम देखेंगे तो सब मटेरियल पृथ्वी पृथ्वी ही दिखाई पड़ेगा, किंतु पृथ्वी से अनंत गुना सूक्ष्म और ताकतवर है जल। तो जब जल की दृष्टि से यह सृष्टि को देखेंगे तो पृथ्वी है ही नहीं, जल ही है सब कुछ, क्योंकि इनका भी आधार जल है। जल का भी आधार तेज है और तेज की दृष्टि से देखेंगे तो जल भी कुछ नहीं है। जल तो बहुत बिखरा हुआ लगेगा क्योंकि उनके कण कण में तेज तत्व है। वायु की दृष्टि से देखेंगे तो तेज भी कुछ नहीं है, वायु ही सब है। और जब आकाश की दृष्टि से देखेंगे तो ये पृथ्वी जल तेज वायु कुछ है ही नहीं, हमें दिखाई पड़ता है वो तो उनका बहुत स्थूल संघात दिखाई पड़ता है। किंतु आकाश के बिना ये कोई भी अस्तित्व का कोई भी चीज रह ही नहीं पाती, ये तो सब उनमें तैरने वाली चीजें है, जल पृथ्वी सब कुछ। तो आकाश की दृष्टि से हम इतने वाइड एंगल से देखेंगे तो आकाश ही है और कुछ नहीं है। तो वैसे ही जैसे कारण की ओर जाएंगे तो ये सब कार्य है वो तो बहुत सूक्ष्म बन जाएंगे। तो वो तत्व इतना पूर्ण है, इतना बड़ा है कि कितना भी ले लो कितना भी दे दो उनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि सब उनमें ही है, सब उनमें ही है। जल को यहां से निकाल के यहां रखो, ये दूसरा और ये दूसरा हो तभी फर्क पड़ता है कि ये कम हो गया और ये बढ़ गया, किंतु ये भी वो है ये भी वो है। तो उनका तो थोड़ा बहुत स्थान में ऐसा हुआ, बाकी कुछ पूर्णता अपूर्णता होती है, सब उनमें ही है। कहने का मतलब कि तुम्हारे अस्तित्व का पूर्ण आधार वो ही है, उनके बिना अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हमारे ऋषि ऐसी कोई दृष्टि हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके,
तो ये स्टेटमेंट कहां से हम, कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? हम मन से देख रहे हैं कि बुद्धि से देख रहे हैं?
मन और बुद्धि से नहीं, किंतु हमारे मन और बुद्धि की जो हमारी जो गाणितिक प्रक्रिया है, सोच है, वो सोच हमें इस ओर ले जाती है। जैसे ये सृष्टि तो है ही है, उनमें कुछ परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अब उनको हम कैसे समझते हैं? तो हमारे मन की जो सोच है उनसे हम बेस्ट सोच कर उनका उनको समझने का हम प्रयास करते हैं उतना ही। बाकी तो ये तत्व ऐसा है कि उनको कौन समझ पाएगा। इसलिए आगे उपनिषद आता है, केन उपनिषद, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह। तो उनमें तो हमारे ऋषि ने ऐसा बोल दिया कि कोई विद्वान ऐसा बोलता है कि मैं ये तत्व को जान गया तो यस्य मतम तस्य अमतम, जिन्होंने जान लिया उनको वो तो कुछ जान नहीं पाया। यस्य अमतम तस्य मतम, और जो बोलता है कि मैं तो ये तत्व को जान ही नहीं पाया, इतना विशाल है, इतना अगाध है, इतना अनंत है कि इनको पूर्णतया जानने का मेरे में कुछ सामर्थ्य ही नहीं है, इतना अगाध है और अनंत है। तो हमारे ऋषियों ने बोला कि जो ऐसा बोलता है भगवान की अनंतता को देख करके मैं इनको नहीं जान पाता है, तो वो कुछ जान पाया है। यस्य अमतम तस्य मतम, जो बोलेगा कि मैं नहीं पूर्ण जान नहीं पाया, तो वो कुछ जान पाया है। क्या जान पाया है? तो कि अनंत तत्व की अनंतता तो को कम से कम जान पाया। कहीं तत्व ऐसे है जिनके आगे हाथ जोड़ लेना और हार स्वीकार करना वही जीत है, सब जगह जीत जाना ही अच्छा नहीं है। तो ये कोई ऐसा तत्व है कि वहां जब हार जाएंगे तो वाकई हम जीत जाएंगे, और केवल मन और बुद्धि से मैं इनको नाप ही लूं, इनका परिमाण ले लूं, इदम इत्थम एतावत, इदम है ये है, दृष्टि से हम अंगुली से निर्देश कर सके तो इनको इदम परिमाण कहते, परिमाण कहते हैं। इत्थम वो ऐसा है, तो उनकी हमने सीमा रेखाएं देख ली। एतावत यहां से लेकर इतने परिमाण का है, तो ये सब तो हमारे मन और बुद्धि के परिणाम है, परिमाण है, और मन बुद्धि के परिमाण में वो पूर्ण तत्व कभी आने वाला नहीं है।
तो हम आत्मा से I mean, we are standing in the platform of atma and seeing the purna tattva.
Yeah, ये जो आत्मा, इसलिए गीता में सब जगह की एक विशुद्धया बुद्धया, ये जो शुद्ध बुद्धि से उनको देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा प्रवेश हो जाएगा, होता जाएगा, और हम उसके नजदीक और नजदीक जाते रहेंगे। ये जो विशुद्ध बुद्धि बोलो या आत्मा बोलो, पवित्र मन बोलो, सब एक है। जो कि आत्मा है, तत्वतः आत्मा की बात है, तो आत्मा तो ऐसा निष्क्रिय है, पूर्ण है, कि जो आत्मा तो अपने अस्तित्व से ही रहता है। किंतु ये जो विचार की भूमिका और ये यात्रा है वो मन बुद्धि के स्तर पर है, किंतु आत्मभाव की शुद्ध भूमिका में रहकर मन बुद्धि से हम ये मार्ग में प्रवेश करेंगे तो हम वो पूर्ण तत्व को जान पाएंगे, ये तो है ही। किंतु क्या जान पाएंगे? कि उनको नहीं जान पाएंगे ऐसा जान पाएंगे।
अच्छा प्रभु जी, और वन मोर क्वेश्चन, कैन वी अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी एंड प्रिंसिपल फॉर शून्यता आल्सो?
उनका एक स्पेशल हम आगे लेंगे, शून्य, व्हाट इज शून्य, उनकी सोच हम लेंगे।
ठीक है,
क्योंकि क्या है ना कि बुद्ध ने दर्शन किया शून्य, शून्य क्यों कहा कि शून्यवाद, सर्वम शून्यम शून्यम, एक जो बुद्ध के जो चार विभाग है उनमें जो वैभाषिक बौद्धा है वो शून्य रूप ये पूर्ण तत्व को लेते हैं, तो उनको कैसे लेना है और किस प्रकार से लेना है उनका समन्वय तो हम करेंगे। किंतु मूल है कि शून्य को पूर्ण क्यों कहा गया, तो कि जिनका प्रारंभ और अंत ही शून्य को यदि हम देखेंगे तो ऐसे शुरू होगा और ऐसे ऐसे चलता रहेगा और उनका वहीं आकर रुकेगा, तो शून्य चलता ही रहेगा। उनका नो एंड और स्टार्टिंग कुछ भी नहीं है, वो पूर्ण है कहीं पर, तो वो शून्य को कैसे समझना है? तो उनका हम स्पेशल चिंतन लेंगे, यही मंत्र के भाष्य में लेंगे।
हाँ बोल, थैंक यू वेरी मच।
बोलिए महेंद्र।
हाँ स्वामी जी,
आपका वीडियो ऑफ है। हाँ बोलो।
સ્વામીજી આપણા આત્મા માટે રોજ શું કરી કે જેનાથી આત્મા ખુશ રહે, જેનાથી રોજ રોજ ડેલી.
ઓકે, હમારા જો આત્મા હૈ ઉનકો પ્રસન્ન રખના હૈ તો એક તો હૈ કે ઉનકે લિયે જો સજાતીય હૈ उनके और हमारी गति होनी चाहिए. दो चीज है, सजातीय और विजातीय. आत्मा के विरुद्ध, अब आपका माइक ऑफ कर देना, आत्मा की यात्रा के विरुद्ध जो कोई भी है वो हमें विक्षिप्त करने वाले हैं, और इसीलिए आत्मा भाव के सजातीय है उनको ग्रहण करेंगे तो हमारा आत्मा प्रसन्न ही रहेगा. सजातीय क्या है? तो जैसे आज के चिंतन में एक आया कि विशालता और पूर्णता, यदि हम पूर्णता और विशालता की दृष्टिकोण से हम पूरे विश्व को देखेंगे तो हम सहज सहज रूप से हम ये सृष्टि के साथ जुड़ते जाते जाएंगे और ऐसा हमें फील होगा. दूसरा कि हमारे आत्मा धर्म को तृप्त करे ऐसी वस्तुओं का सिलेक्शन करो. देखना, चलना, खाना पीना, बोलना, सब जगह ये सिलेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है एक सफल और अच्छा जीवन नाम की. तो कि अच्छा सिलेक्शन वही अच्छा जीवन है. अच्छा जीवन का अर्थ क्या है कि अच्छा जीवन है. अच्छा जीवन नाम एक अच्छी आत्मा, तृप्त आत्मा. तो अच्छा जीवन किसको बोलते हैं? तो कि अच्छा सिलेक्शन है. खाते तो सब कोई है किंतु खाने में हमारा सिलेक्शन कैसा है वैसा हमारा स्वास्थ्य रहेगा. देखते सुनते तो सब कोई है किंतु देखने सुनने में हमारा सिलेक्शन कैसा है उनके अनुसार हमारी मन बुद्धि विचारधारा और हमारी आत्मा की पवित्रता रहेगी. तो इसीलिए सब जगह सिलेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है. और यही सत्संग है वो हम क्या करेगा कि हमारे अंदर विवेक जागृत करेगा. दिखाई में तो सब कुछ आएगा, आंख खुली है तो सब कोई दृश्य हमारे आंख के सामने आएंगे, किंतु मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कहां दृष्टि को स्थिर रखना है और कहां से दृष्टि को वापस लाना है, ये तो हमारा विवेक ही हमें गाइड करेगा. तो जब ये तत्वों का परिचय होगा तो सहज सहज भाव में हमसे ये सब अच्छा सिलेक्शन होता ही जाएगा. इसलिए आत्मा के सजातीय धर्म में जो है वैसा सिलेक्शन करो तो वही हमारे आत्मा को प्रसन्न और तृप्त रखेगा.
प्रभु, one more doubt actually. Last class, you explained about the five stages was the avastha of mind. Is it actually in progressive in nature or aage jane ke baad peeche aa sakta hai, aisa hai?
Haan, sab ye man ke five stage nahi hai kintu panch bhumika hai
inme bhi. Matlab, what exactly does it mean to bhumika? Matlab, is it a particular state of mind and again it can change or
it can change kyun? Okay. Kyunki kya hai na ki kabhi man kshipt bhumika mein rehta hai to kabhi mood mein jata hai, kabhi ekagrata ki bhi hame anubhuti hai, kahin karma humne aise kiye hai to wo aaj bhi hame yaad hai. To kya hua tha to ki us waqt hamara man hai wo ekagrata ki bhumika mein tha, किंतु बाद में ऐसा नहीं रहता तो फिर से हम मूड में चले जाते हैं, विक्षिप्त भूमिका में चले जाते हैं. तो ये पांच भूमिका है मन की, तो यहां से वहां जाते ही रहता है. ये योग की प्रक्रिया का रहस्य क्या है? तो कि पहले तुम ये पांचों भूमिका को समझो और समझने के बाद अपने मन और बुद्धि को इतना सक्षम बनाओ कि तुम धारो वो भूमिका में अपने मन को रख सको. तो ये योग की प्रक्रिया है वो क्या है? तो कि प्रकृति जो है, प्रकृति उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, तो वो कंट्रोल जीव को अपने हाथ में लेना है, यही योग का सार है। ये जो पुरुष है वो ही करता है, पुरुष के अधीन ही ये सब है, किंतु वास्तव में हो गया है कि पुरुष का तो कुछ कर्तृत्व रहा ही नहीं, मन अपनी ओर दौड़ता है और संकल्प विकल्प करता रहता है, बुद्धि कहीं ना कहीं निश्चय करके काम में लग जाती है, आंखें अच्छा लगा तो आंखें वहां दौड़ने लगती है, तो ये सब जो अपना अपना काम करता रहे उनके ऊपर आत्मा का आधिपत्य करना, वही योग का सार है। और एक बार आत्मा का आधिपत्य आ गया तो जब जिसको जहां रखना है, जहां स्थिर करना है, वहां वो आत्मा स्थिर कर पाएगा। और इसीलिए ये जो मन की पांच भूमिकाएं है तो उनको पहले समझना जरूरी है, कभी इसमें रहता है कभी उसमें रहता है, तो हम यदि समझ पाएंगे कि आज अभी मैं कौन सी भूमिका में हूँ, क्षिप्त में हूँ, विक्षिप्त में हूँ, मूढ़ में हूँ या एकाग्र में हूँ, तो समझ पाएंगे तभी तो वहां स्थिर रह पाएंगे। और अर्थ और दूसरा कि दूसरी क्षिप्त भूमिका में है और हमें विक्षिप्त में जाना है तो भी पहले हमें क्षिप्त का परिचय तो होना चाहिए और विक्षिप्त का भी परिचय होना चाहिए, ये बराबर नहीं है और यहाँ मुझे पहुँचना है। और इसीलिए पांच भूमिका है, ऐसे स्टेप नहीं है कि क्षिप्त के बाद मूढ़, मूढ़ के बाद विक्षिप्त, विक्षिप्त में जाने के बाद कोई क्षिप्त में आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। सब भूमिकाएं अपनी ओर से कार्य करती रहती है।
तो इट इज एक्चुअली नेचुरल फॉर द माइंड टू बी इन फाइव डिफरेंट स्टेट्स।
या नेचुरल,
नेचुरल। सो व्हाटएवर साधना वी आर डूइंग इट इज अननेचुरल, अननेचुरली वी आर ब्रिंगिंग द माइंड, इज इट सो?
नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल उनका मन, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कर्म और संस्कार का स्वीकार किया कि जैसे कर्म हम करते आए हैं उसके अनुसार संस्कार हुए हमारे मन के ऊपर, और वही संस्कार हमें ड्राइव करते हैं ऐसे कर्म करने के लिए। तो वही संस्कार से हम जो नहीं करना था वो करने लगे हैं। जो हमारा मन, किसी का मन मूढ़ अवस्था में रहता है, किसी का क्षिप्त भूमिका में रहता है, इनका कारण क्या है? तो कि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं, तो वही कर्म हमें वैसा ही करवाता है। इसीलिए हमारा मन जो वो भूमिका में नहीं रहना था वहां रहने लगा, वो अननेचुरल हो गया। नेचुरल, अननेचुरल मींस क्या कि नहीं करना था वही करता रहता है, यही तो अननेचुरलिटी है। तो पहले तो उनका अस्तित्व का जो आधार है, मूल है, उनकी जो शक्ति है, और ये मन कितना कर सकता है वो नेचुरल, उनका जो पावर है उनकी ओर तो हमें योग के द्वारा ले जाना है। उनका जो नेचुरल पावर